ओम शांति। तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाने वाली आध्यात्मिक डॉक्टर सविता दीदी जी हम सबके बीच में है। हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अल्प वायु से ही आपका मन समाज सेवा की भावनाओं से ओतप्रोत था। 1974 में मात्र 9 वर्ष की आयु में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 85 में आपने प्रथम बार अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की। बाबा से मिली प्रेरणाओं का अनुसरण करते हुए आपने लौकिक पढ़ाई MBBS पूर्ण करने के बाद 89 से आपने अपना इस जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। लगभग 10 वर्ष ग्लोबल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में आपने अपनी विशेष सेवाएं दी। फिर 2000 से 2007 तक विद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु व्यक्तिगत चिकित्सक के तौर पर उनके अंग संग रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने दादी जी की बहुत अच्छी सेवा की। साथ साथ वर्ष 2001 के 1 से महिला विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप सेवाएं दे रहे हैं। आपने भारत के अतिरिक्त यूके, यूएसए, जापान, रशिया, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड आदि अनेक देशों में बाबा की ज्ञान के सुवास फैलाने के हेतु सुंदर सेवाएं की। आप एक प्रखर वक्ता है। आप लोगों के हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी एजुकेट करते हैं और मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान का आप एक हिस्सा रहे। आपने अनेक नेशनल एवं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। नारी सशक्तिकरण करते हुए अपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा का नारा देते हुए सामाजिक समानता आदि विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेटर किया है। ऐसे शांत, शीतल, मधुर एवं सरलचित वक्ता आज हमें प्राप्त है। तो आज दीदी जी से हम सुनेंगे तीव्र पुरुषार्थ की विधि क्या है। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। मधुबन में भट्टी में आए हैं तो भट्टी में आने का मतलब ही है तीव्र पुरुषार्थी बनना, क्योंकि अपने स्थानों पर तो कई बातें होती हैं। तो जितना हम स्वोन्नति करना चाहते हैं, जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ मधुबन में तो हम सब बातों से फ्री हैं और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक स्टूडेंट लाइफ ही है, करना ही ज्ञान योग है। और यही फिर जो हम यहाँ 3 दिन अपने आप में भरपूर होते हैं, वही फिर जब अपने स्थानों पर भी जाते हैं तो वही फिर हमें मदद करता है। तो जैसे हम सब जानते हैं, बाबा भी हमें समय का इशारा देता रहता है कि समय बहुत कम है। हालांकि ये तो शुरू से ही बाबा ने कहा समय बहुत कम है, लेकिन अब हमें उसकी निशानियां भी दिखाई देती हैं कि समय सचमुच बहुत कम है और हमें मंजिल पर पहुंचना है। जैसे गीत भी बज रहा था ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, तो तेज कदम चलना पड़ेगा। तो मंजिल कौन सी है? मंजिल कौन सी है? संपूर्ण बनना, बाप समान बनना। तो बाबा के समान हम बने हैं या नहीं, वो बनने में हमें कितना समय चाहिए, तो उसके लिए हमारी गति क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो समय है वो अचानक और एवर रेडी का समय है। हम सब सुनते हैं ऐसे ऐसे समाचार, अचानक कुछ भी हो जाता है या जो भी जाने वाले भी होते हैं, कोई निश्चित तो नहीं है ना कि हम पूरा संगम युग रहने वाले हैं, चलो अभी 10 साल और संगम युग है, जो अनुमान लगाते हैं कि 10 साल और संगम युग है तो हम पूरा ही संगम युग रहने वाले हैं, ऐसी कोई गारंटी है? तो इसीलिए बाबा जो शुरू से हमें स्लोगन देते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जो करना है वो अभी करना है, ऐसी हमारी स्पीड होनी चाहिए कि जो भी हमें समझ में आता है कि मेरा ये पुरुषार्थ होना चाहिए बाप समान बनने का, तो अभी से ही, अब से ही वो पुरुषार्थ हमें करना है। तो स्पीड की बहुत वैल्यू होती है, जैसे हम लेट हो जाते हैं और हमें टाइम पर पहुंचना है तो लोग कौन सा साधन लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं, कि हजारों किलोमीटर की यात्रा भी हम कुछ घंटों में पूरी कर लेते हैं, और लोग रेलगाड़ी से भी जाते हैं, है ना, ट्रेन से जाते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, कुछ लोग जो हैं वो ये मोटरसाइकिल से भी जाते हैं या स्कूटर से भी जाते हैं, तो क्या होगा, उससे डबल समय लगेगा। कुछ लोग पैदल भी जाते हैं, है ना, वो तो चलो यात्राएं वगैरह करते हैं, कोई आंदोलन वगैरह करते हैं, तो जैसे भी राहुल गांधी ने किया, उन्होंने किया था ना पिछले साल, तो वो फिर महीनों लगते हैं, दिन की बात नहीं। तो हम कैसे चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं चलती कला में चल रहे हैं, चलना माना क्या है, चलती कला, तो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ बाबा कहता है, या फिर जैसे प्यादे, तीन तीन लेवल होते हैं पुरुषार्थियों के, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, तो प्यादे माना पैदल, पैदल वाली सेना जो है वो वाला पुरुषार्थ, और दूसरे हैं घोड़े सवार, घोड़े सवार माना चाहे रेलगाड़ी से जाओ, चाहे मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से जाओ, वो सब है घोड़े सवार वाला, मतलब थोड़ा स्पीड ज्यादा है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। और फिर तीसरा जो है वो उड़ती कला वाले, महारथी जो है वो है उड़ती कला वाले, तो उड़ती कला वाले जो हैं वो तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। तो तीव्र पुरुषार्थी माना ही हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उड़ती कला वाला कौन हो सकता है, डबल लाइट, जिसकी डबल लाइट स्टेज, जो लाइट है वही उड़ सकता है, भारी बोझ वाला तो उड़ ही नहीं सकता है। तो वो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हमारी, बाबा ने हमें कोई बहुत मुश्किल पुरुषार्थ नहीं बताया है, है ना, हमारा है ही सहज राजयोग, तो सहज पुरुषार्थ क्या है हमारा, क्योंकि जो रेगुलर हमारा हो सकता है वो तभी हो सकता है जब वो सहज है, कोई भी मुश्किल चीज वो रेगुलर नहीं हो पाती है। तो बाबा ने हमें दिनचर्या बनाकर दे रखी है अमृत वेले से रात तक, बस उसमें हमें अपने आप को सेट करना है। अमृत वेले से रात तक बाबा के दी हुई श्रीमद प्रमाण, दिनचर्या प्रमाण हम चलते हैं तो फिर हमें तीव्र पुरुषार्थ के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही हमारा पुरुषार्थ तीव्र चल रहा है। तो अमृत वेला कैसे करना है वो विधि बाबा ने बताई है ना, हर कर्म के लिए श्रीमत है, विधि से सिद्धि है, है ना, एक होता है हम श्रीमत पर चलते हैं, एक होता है हम मन मत पर चलते हैं, एक होता है हम पर मत पर चलते हैं। तो अगर हम तीव्र पुरुषार्थी हैं तो सिर्फ श्रीमत पर चलते हैं, फिर अपने मन को भी, मेरा मन क्या चाहता है, मेरा मन क्या करता है, मन तो कहेगा अमृत वेले इतनी अच्छी नींद आती है, सो जाओ, क्या जरूरत है उठने की, मन क्या चाहता है, सोना चाहता है, है ना। फिर मुरली की भी बात आती है तो कोई ना कोई बहानेबाजी मुरली के टाइम भी हो सकती है, अरे बहुत बारिश हो रही है आज, हाँ रात को तो थके हुए थे बहुत, नींद ही नहीं आई आज रात को, तो आज सो जाते हैं कल चले जाएंगे, मतलब अगर दिनचर्या में भी कभी कैसे कभी कैसे, है ना, अगर हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, आज उठ गए अमृत वेले, कल नहीं उठे, है ना, दो दिन उठ गए, चार दिन नहीं उठे, अब रहते तो घरों में ही हैं, परिवारों में ही हैं, अब वो परिवार में माहौल कैसा है हमारा, हाँ कई बार उसके कारण भी हमारा अमृत वेला डिस्टर्ब होता है। फिर हम उठकर बैठ जाते हैं, चलो इतनी लगन है हमारी कि रह नहीं सकते अमृत वेले उठे बिना, बाबा को योग लगाना ही है, उठ के तो बैठ गए पर कैसे बैठे, कैसे बैठे, हाँ साधारण रीति से बैठे या पावरफुल योग किया। साधारण रीति से कैसे बैठते हैं, उठ के बैठे तो सही, बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं। अब बिस्तर पे बैठे तो दो मिनट तो योग लगाया, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, याद किया, और दो मिनट के बाद आंख खुली, पांच बज गए, योग हो गया, निद्रा योग हो गया। चलो उठकर नीचे भी आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, दस मिनट योग लगाया, कुर्सी पे आए तो नेचुरली थोड़ा एक्टिविटी की तो थोड़ा फ्रेश हो गए। हाँ लेकिन कईयों को समझ ही नहीं आता है, अब योग में बैठ तो गए, अब क्या करना है, परम धाम में जाके बाबा के साथ बैठ गए साइलेंस में। अब साइलेंस में क्या होने वाला है, अगर आपने मन को शांत कर दिया, मन तो पहले से ही शांत था ना नींद में, अब क्या होगा, फिर वही झुटका योग होगा, झूला झूलते रहेंगे सारे टाइम। कई बार बाबा कहते हैं हंसी में कि वतन तक बाबा के पास ट्यून भी पहुंच जाती है, हाँ इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं। तो ऐसा अमृत वेला हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हमने बाबा से वो अनुभव ही नहीं किया ना, जो अमृत वेले बाबा के प्यार का अनुभव करना है, बाबा से शक्तियां भरनी है, बाबा से वो गुणों का अनुभव करना है, सर्व संबंधों का, वो हमने किया ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी शांत होके नहीं बैठ जाना है। अमृत वेला रात को ही पहले से तैयारी करनी है, और सबसे बड़ी बात होती है रात को सोते हम कैसे हैं, उसका भी हमारे अमृत वेले पर असर होता है। कई लोग रात को सोने जाते हैं, सारी चिंताएं बेड पे ही करते हैं, सारा दिन तो बिजी होते हैं, सोचने का टाइम मिलता नहीं, तो कहाँ आ रही है सारी बातें, बेड पे गए शुरू हो जाते हैं, फिर नींद भी उड़ जाती है। तो फिर कैसे सोना है, विधि क्या बताई हुई है बाबा ने, बाबा को सब सुना दो, हाँ सच बाबा को सुना दो, माना चार्ट दे दो बाबा को, खुद हल्के हो जाओ, बाबा को देख करके बाबा की याद की गोदी में सोना है। ये ब्राह्मणों के सोने की विधि है, दुनिया वाले ऐसे सोते हैं कि बेड पर जाकर के चिंता करेंगे, हाँ इसकी उसकी बात उनके दिमाग में चलेगी। तो जब हम उस विधि से सोते हैं तो सुबह उठते ही हमें बाबा याद आएगा, अगर और बातें दिमाग में चली और हम सोए तो सुबह उठकर क्या याद आने वाला है, वही याद आएगा जो यहाँ पर रात को था, वही सवेरे चलेगा, और योग लगने में फिर मुश्किल होगी, हाँ फिर लगेगा योग लग ही नहीं रहा है। फिर उठने के बाद जब हम बैठ गए फ्रेश होकर के, तो हमें पहले अपने अनादि स्वरूप का चिंतन करना है, क्योंकि अमृत वेले हम अपनी बीज रूप स्थिति का अनुभव सहज कर सकते हैं। हम ऑलरेडी अशरीरी हुए होते हैं, जब हम सोते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है उस समय, तो वो स्थिति जो बीज रूप स्थिति है परम धाम में बाबा के साथ, और फिर अनादि गुण। तो हमारे अनादि गुण कौन से हैं, अनादि गुण कौन से हैं, शांत स्वरूप हूँ मैं, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, हाँ सातों गुण, वो अनुभव करना बाबा के साथ, बाबा सागर है और मैं उन गुणों का स्वरूप हूँ। तो आपको महसूस होगा वो गुण जैसे आत्मा में भर गए, यानी हम उनसे भरपूर हो गए। फिर बाबा से सर्व संबंधों से रूरिहान करो, नेक्स्ट स्टेप में बाबा से सर्व संबंध है हमारे, तो अगर हमने अमृत वेले बाबा से वो सब संबंधों का प्यार ले लिया, हमारा माता भी है शिव बाबा, पिता भी है, मेरा शिक्षक तो है ही बाबा, गुरु है, साथी है, साजन है, दोस्त है, जो भी सब संबंधों का दिल का भाव व्यक्त करो बाबा को, है ना, क्या प्राप्ति हुई है उन संबंधों से। हम रोज तो अनुभव करते हैं ना, तो अपना मन का भाव बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बाबा कैसे हमारी पालना कर रहे हैं, कौन पालना कर रहा है? बाबा कर रहे हैं। तो वो अगर हमने अमृत वेले अनुभव कर लिया तो फिर कोई भी देहधारी का प्यार नहीं खींचेगा। अगर आपने बाबा का प्यार अनुभव नहीं किया तो क्योंकि ये आत्मा खाली है तो फिर कोई ना कोई दूसरा आपको खींचेगा उस प्यार से। जो भी प्यार देगा आप उसकी तरफ चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए माया उस रूप में विघ्न रूप ना बने हमारे लिए, वो अमृत वेले ही हम बाबा से वो सर्व संबंधों का प्यार अनुभव करें। फिर लास्ट स्टेप में अब हमने ले लिया बाबा से, अब हमें क्या करना है? देना है। तो मनसा सेवा, बाबा कितने समय से हमें मनसा सेवा का होमवर्क दे रहे हैं। हमें बाबा कहते कितनी आत्माएं दुखी हैं इस संसार की, कितने पुकार रही हैं भगवान को, पुकारती भगवान को हैं, देवी देवताओं को भी पुकारती हैं। उनको थोड़ी पता है चैतन्य में देवी देवताएं यहीं बैठे हैं, है ना, लेकिन पुकार तो रही हैं कि हमारी पुकार सुनो, हमारे दुख दूर करो। तो फिर कौन करेगा? बाबा के साथ कौन निमित्त है? हम। तो जो अमृत वेले हम सकाश दे सकते हैं निर्विघ्न, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया सोई हुई है, सोए हुए हैं तो उनका तमोगुण दबा हुआ है, इसलिए हम जो भी वाइब्रेशन फैलाएंगे वो सहज आत्माओं तक पहुंचेंगे। और जिसकी भी कोई पर्सनल सेवा हमें करनी है, कोई आत्मा को विशेष हमें सहयोग देना है, तो वो भी हम सहयोग विशेष उस समय दे सकते हैं। तो हम अपने अमृत वेले को तीन हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे। बीज रूप स्थिति में ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, जो बाबा ने हमें बताया। तो विकर्म विनाश भी करना है हमें, जन्म जन्मांतर के आत्मा के लिए विकर्म जो हैं। और दूसरा हिस्सा बाबा से सर्व संबंधों का प्यार, अपने आप को उससे भरपूर करना है। और तीसरा हिस्सा जो मैंने बाबा से लिया, मुझे पूरे विश्व की आत्माओं को देना है। तो ऐसे अगर हम मन को बिजी रखेंगे तो आपको एक झुटका नहीं आएगा, और नहीं तो 10 मिनट के अंदर स्विच ऑफ हो जाते हैं, निद्रा योग में चले जाते हैं पूरी तरह से। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी माना पावरफुल अमृत वेला, बिल्कुल बाबा के साथ फुल कनेक्शन, बुद्धि जरा भी इधर उधर न जाए। फिर उस जो मुरली के लिए बाबा हमें कहते हैं, तो मुरली की भी विधि है, उस विधि पूर्वक हम मुरली सुन रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट में हम अपने आप को संपूर्ण बना रहे हैं। बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट में हमें पास होना है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं। कईयों का सेवा का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेवा करना बहुत आसान होता है, कर्म करने का तो अभ्यास है ना हमको, तो कोई भी कर्म करा लो जो हमें आता है वो तो हमें करना कोई मुश्किल होता नहीं है। तो ऐसी सेवाएं जो भी हमें मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत आसान है। सबसे मुश्किल होता है ज्ञान सुनना भी, सेकेंड नंबर। फिर दूसरा नंबर जो कठिन होता है योग, और उससे भी ज्यादा कठिन होता है धारणा। तो सुनना भी इजी है, सुन लेते हैं, सुनकर खुश होते हैं, बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, ज्ञान के कितने अच्छे राज सुनाते हैं, कहाँ तक? क्लास तक। क्लास के बाहर गए वैसे के वैसे। तो तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे, मेजॉरिटी का पुरुषार्थ होता है क्लास के बाहर सीढ़ी उतरी और क्या हो गए? वही के वही जहां थे। भूल ही जाते हैं कि बाबा ने भी कुछ कहा है। तो जैसे दुनिया में भक्ति में सत्संग करने की आदत होती है ना लोगों को, ऐसे ही हम मुरली का सत्संग करते हैं, है ना, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से। उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कौन है? जो मुरली सुनेगा और उसको समाएगा। आज बाबा ने क्या कहा, क्या कहा? मीठी सैक्रीन है, है ना, हर मुरली में कोई धारणा की बात होती है, तो वो धारणा सारा दिन मेरे मन में चलती रहे, क्योंकि हमने दादियों को देखा, दादियों का ऐसा पुरुषार्थ देखा हमने, दादी प्रकाशमन जी के साथ हम रहे व्यक्तिगत, फिर और दादियों के मधुबन में तो सभी दादियां थे, तो हम देखते थे दादियों का मुरली पर कितना अटेंशन था। बाबा ही कहता था मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो दादी को जब टाइम मिलता था है ना, चार बार तो दादी का फिक्स था मुरली पढ़ना। बाबा तो कहते हैं विचार सागर मंथन करो, एकांत में बैठ करके उसको चिंतन करो, बाबा ने कहा ऐसा क्यों कहा, ये पॉइंट कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है, ये सेवा में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे व्यर्थ संकल्पों में क क की क्यू लगाते हैं ना, ऐसे ही ज्ञान के चिंतन में भी कौन सी क्यू है, क्यों क्या कैसे। बाबा ने क्यों ये बात कही, इसको हम कैसे धारणा में ला सकते हैं, इसको हम कैसे सेवा में यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी वही प्रश्न है, लेकिन वो हमें गहराई में ले जाते हैं और वो हमारा स्वरूप बनता है कि वो गुण हमारे जीवन में आ जाता है। अब मीठा मतलब जो आज बाबा ने कहा मीठी सैक्रिन बनना है, तो मधुरता नम्रता हर्षित मुक्ता ये गुण है ना, माने एक में अनेक समाये हुए हैं ऐसा हम कहेंगे तो ये गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, और नहीं तो क्रोध करते हैं, मीठे नहीं है तो क्या होता है, कोई भी किसी की बात पसंद नहीं आएगी, कोई भी गलत करेगा या कोई भी झूठ बोलेगा, कुछ भी कारण बनता है तो हम क्या करते हैं, सीधा गुस्सा करते हैं। लेकिन मीठे हैं तो भले वो कोई गलती कर रहे हैं, अब गलती करने वाले गलती नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उनके गलती करते हुए भी हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, हो सकता है या सिर्फ कहने की बातें हैं, हो सकता है ना, अनुभव किया है, हाँ जिसने अनुभव किया है वो हाथ उठाओ। तो देखो जब इतने कर सकते हैं तो बाकी सब भी कर सकते हैं, तो पॉसिबल तो है कि बाबा यूं ही नहीं कहता है। तो इसीलिए हर दिन की मुरली का चिंतन चलना जरूरी है, और नहीं तो रिवाइज करो, मोबाइल में तो हमारे हाथ में मुरली है, बाबा ये नहीं कहता है मोबाइल में ही मुरली हो गई। हाँ कई भाई बहने आजकल फिर ऐसे मुरली सुनते हैं कि अरे ठीक है ना टीवी पे मुरली आ ही जाती है घर में, मोबाइल में तो मुरली है ही ना, तो मुरली थोड़ी मिस करते हैं, मुरली तो पढ़ ही लेते हैं, मुरली तो सुन ही लेते हैं, बस हो गया। तो वो मुरली सुनना जो घर में आप सुन रहे हो और जो सेंटर पर हम विधि पूर्वक मुरली सुनते हैं, फर्क होगा नहीं होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, एकाग्रता का, क्योंकि हम सब बातों से फ्री होकर के सेंटर पर आकर मुरली सुनते हैं, तो वो बातें हमारे अंदर जाती हैं। और घर में कैसे सुनते हो आप, मुरली भी सुनते हो काम भी करते हो, तो सुनते हुए भी नहीं सुनते है ना, ऐसे ही होता है ना, आप मुरली सुन रहे हैं किसी का फोन आ गया तो फोन पे बात कर ली, अब वो दो मिनट बात किया, दो मिनट की मुरली गई, फिर कोई आकर के घर वाला आपसे कुछ पूछने लगा उसको भी आप जवाब दे रहे हो, अब उसने पांच मिनट बात कर ली, अब क्या हुआ मुरली गई, कोई आकर के दरवाजे पे घंटी बजा रहा है आप चले गए वो घंटी खोलने और देखा उससे बात किया जो भी उसको अटेंड किया आपके दस मिनट चले गए, मुरली भी चल रही है। तो ऐसे काम करते हैं हम, या कोई किचन का काम याद आ गया हाँ तो किचन में चले गए, ये नुकसान ना हो जाए वो भी कर लिया, तो मुरली सुनी लेकिन अंदर कुछ भी नहीं गया, तो फिर वही होता है कि हमने नियम निभा लिया। बाबा ने कहा ना मुरली सुनना है, मुरली तो मैंने सुन ली लेकिन वो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लाएगी। तो इसीलिए कोई 50 साल से ज्ञान में चलता है, बहुत होंगे यहाँ, कौन है 50 साल वाले, 50 साल से ज्ञान में चलने वाले, 50 साल वाले कोई भी नहीं है, अच्छा कोई 40 साल वाले होंगे, हैं 40 साल वाले, अच्छा और कोई 30 साल वाले होंगे, वो भी हैं 20 साल वाले, अच्छा वो थोड़े ज्यादा हैं, और 10 साल वाले, बहुत है। तो जो 10 साल वाले हैं उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए? देखो 50 साल से ज्ञान में चलते, मैं क्या बताना चाह रही थी, 50 साल से हम ज्ञान में चलते हैं और मुरली कैसे सुनते हैं? अगर हम साधारण रीति से मुरली सुनते हैं तो भी हमारे अंदर उतना परिवर्तन नहीं आएगा, पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। वो आप जो 10 साल वाले हो, अगर आप विधि पूर्वक मुरली सुनते हो और हर बात को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हो तो क्या हो गए? लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो 50 साल वाले से भी क्या होगा, क्योंकि आपको गैलप करना आता है। कैसे? जैसे दारी जानकी का मिसाल सुनाते ना, दारी जानकी थोड़ा लेट आए, ओम मंडली शुरू हुई उसके एक साल के बाद दारी जानकी ज्ञान में आए। तो बाबा तो तभी भी कहता था अगली दिवाली नहीं आएगी, बाबा ने तो कभी कहा नहीं ना विनाश कब होगा, हमेशा लगता था पता नहीं कब हो जाएगा। तो दादी को लगा मैं तो बहुत लेट हो गई, एक साल चला गया, अब मैं कैसे तीव्र पुरुषार्थ करूं, मतलब मैं कैसे ऐसे पुरुषार्थ करूं कि मैं 8 में आ जाऊं। दादी का लक्ष्य था मुझे 8 में आना है। तो दादी ने बाबा से बात की कि बाबा मुझे बताओ, आप जो बताएंगे वो पुरुषार्थ मैं करूंगी। तो बाबा ने दादी को कहा कि तुम है ना रोज 6 बार मुरली पढ़ो। और दादी ने कहा कि मैंने 6 बार नहीं 12 बार मुरली पढ़ी रात को जाग जाग कर। आप दादी तो खुद ही सुनाते थे, सुना होगा सभी ने। तो दादी कहती मैंने 12 बार रात को जाके, क्योंकि दिन में तो यज्ञ की सेवा होती थी, सबकी ड्यूटियां लगी हुई थी तो उतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मैं रात को जाग के पूरा 12 बार मुरली पढ़ती थी। 6 महीने तक लगातार मैंने ऐसा किया जब तक मुझे ये संतुष्टि नहीं हो गई कि हाँ अब मेरा उतना पुरुषार्थ हो गया। तो वही कहा ना कि जैसे दादियों का पुरुषार्थ रहा कि मुरली से फिर इतना प्यार। यूं भी हम कभी दादी जानकी को देखते थे तो दादी जैसे ही फ्री होती थी दादी के हाथ में मुरली ही होती थी। तो मुरली क्योंकि हमें रियलाइज कराती है हर बात की नॉलेज, बाबा हमें मुरली में देता है। मुरली में चारों सब्जेक्ट है ना, जैसे बताया ज्ञान की बातें भी हैं, योग के बारे में भी। कोई साकार मुरली ऐसी नहीं होती जिसमें बाबा हमें योग के बारे में ना कहते हों, याद के बारे में होता है नहीं होता है। हर मुरली में बाबा अंडरलाइन कराते हैं याद करना है। और अभी पीछे मुरली में बाबा ने कहा 8 घंटे, 8 घंटे बाबा को याद करो, 8 घंटा आप भले शरीर निर्वाह करो, सेवा करो, जो सेवा में लगे हुए 8 घंटा सेवा करो, जो ग्रस्त में रहते हैं अपना शरीर निर्वाह करना है 8 घंटे आप वो कर्म करो, 8 घंटे भले आप रेस्ट करो। तो 8 घंटे का मिनिमम हमारा योग का चार्ट होना चाहिए। तो आप में से कोई समझते हैं हमारा 8 घंटे का योग का चार्ट है? आप तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे जिसका योग का सब्जेक्ट इतना पावरफुल हो? ज्ञान तो है ही, ज्ञान को उस विधि पूर्वक हमें सुनना है, लेकिन उसके साथ साथ योग भी चाहिए। तो 8 घंटे योग माँ कैसे होगा? अमृत वेला किया, मुरली सुना, अगर मुरली भी विधि पूर्वक सुनी तो वो भी योग है, क्योंकि किससे बुद्धि लगी हुई है, पढ़ा कौन रहा है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। हाँ इधर उधर बुद्धि घूम रही है, बैठे हैं मुरली में और बुद्धि अपना काम कर रही है, तो फिर हम उसको योग नहीं कहेंगे। कई बार मुरली में बैठे बैठे भी लोग कहीं दूसरे कामों में बुद्धि को बिजी रखते हैं। और कर्म योग करना, जो भी हम कर्म करते हैं बाबा की याद में करते हैं, ट्रस्टी बनकर करते हैं, कर्म योगी बनकर करते हैं, तो वो भी योग में आ जाता है, क्योंकि बाबा को याद किया ना हमने। फिर भोजन करते हैं तो बाबा की याद में भोजन करते हैं, फिर रात को सोने से पहले भी बाबा को याद करते हैं। तो ये सब मिलाकर के 8 घंटा होना मुश्किल है, सहज है? तो 8 घंटा योग होना चाहिए ना। और कब हो पाएगा? जब बाबा से ही सर्व संबंधों का अनुभव, यानी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा के सिवाय कोई याद ही नहीं आएगा। कोई भी बात है तो हम किससे करेंगे? दुनिया में भी जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं ना, उनसे ही हम अपनी सारी बातें करते हैं। फिर एक एक बात करेंगे, हर बात डिटेल में करेंगे। और जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो जब आते हैं तो क्या बात होती है? हाँ, बस थोड़ा हालचाल पूछेंगे या कुछ उसके घर का समाचार पूछेंगे, बस हो गया, अब क्या बात करें। हाँ, लेकिन जो क्लोज होता है उससे बातें ही खत्म नहीं होती। हाँ, कोई आपके ऐसे फ्रेंड मिल जाए तो उनके साथ बैठते हैं तो फिर बातें खत्म होती हैं, घंटों कहाँ बीत गए पता ही नहीं चलेगा। तो इतना क्लोज रिलेशन हमारा बाबा के साथ हो तो फिर हमें 8 घंटा योग मुश्किल नहीं लगेगा। और क्या निरंतर योगी बन जाएंगे? दादी, बड़ी दादी जी जब थे, तब मैं जब दादी जी के साथ फुल टाइम सेवा में थी तो दादी तो सेवाओं में बिजी रहते थे। अमृत वेला तो दादी बैठते थे बाबा के कमरे में, जब शांति वन में रहने लगे। यहाँ पांडव भवन में तो दादी हमेशा हिस्ट्री हॉल में योग करते थे, लेकिन जब नीचे रहने लगे शांति वन में तो फिर दादी कॉटेज में ही बाबा का कमरा बना हुआ है तो वहां दादी योग करते थे। लेकिन शाम के समय मैंने कभी भी दादी को योग में बैठे हुए नहीं देखा। और दिन भर भी दादी की सेवाएं चलती थी, कहीं प्रोग्राम में लोग मिलने जुलने वाले सब उसमें। तो ऐसे ही एक दिन मैं दादी के साथ बैठी थी तो मैंने दादी को पूछा कि दादी आप, क्योंकि मैं पहले हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल के अनुसार मैंने अपनी दिनचर्या सेट कर रखी थी। तो 5 बजे हॉस्पिटल पूरा होता था तो आने के बाद 6 से अपना योग चलता है शाम को यहाँ शांति स्तंभ पर। और भी तो नियम था 1 घंटा शाम को योग जरूर करना, अमृत वेला भी बैठक जो योग है और फिर शाम का भी 1 घंटा योग करना है। लेकिन दादी की सेवा में आई तो दादी के साथ ही रहना है, तो वो योग वाला पार्ट मेरा पूरा हो गया। क्योंकि दादी नहीं करती थी तो मैं भी कैसे करूं, मुझे भी उनके साथ सेवा में रहना है। तो ऐसे ही मुझे जब एक बार विचार चला तो मैंने दादी को पूछा, मैंने कहा दादी आप शाम को योग नहीं करते हो, मतलब ऐसे? तो सहज भाव से तो दादी मेरे को आश्चर्य से देखने लगी। तो दादी ने कहा मैं बाबा को भूली कब हूं जो मुझे योग करना है? तो मतलब मुझे ही शर्म आ गई कि मैंने समझा ही नहीं। मतलब हम ऐसे समझते हैं कि जब हम बैठकर योग कर रहे हैं तभी योग कर रहे हैं, और बाबा का तो कौन सा योग है? कर्म योग है। हम तो कभी भी बाबा को याद कर सकते हैं। तो उनके तो शुरू से ही जो लगन थी बाबा के प्रति, हम कहेंगे रोम रोम में बाबा समाया हुआ है। तो फिर ये स्थिति हो जाएगी, अगर बाबा से हमारा इतना प्यार, इतनी समीपता है संबंधों में, तो फिर हम कहेंगे भूलें कैसे। अभी प्रश्न होता है याद करें कैसे, है ना? योग लगता नहीं, योग में बैठते हैं तो आधे लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि योग ही नहीं लगता है तो यहाँ बैठकर क्या करेंगे। तो क्या होता है, जब ज्ञान की क्लास होती है तो क्लास फुल होती है, सभी भट्टियों में हम देखते हैं, है ना? और जब योग शुरू होता है तो गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब क्यों गायब हो रहे हैं? अगर बाबा से योग लगता है तो ज्ञान की क्लास में भले कम होंगे लेकिन योग की क्लास फुल होगी। पांडव भवन में तो ऐसा नहीं होगा मैं समझती हूँ, क्योंकि पांडव भवन में सहज है, योग हमें लगाना नहीं पड़ता। यहाँ भी वही स्थिति है कि योग अपने आप लगता है। किसको फील होता है यहाँ पांडव भवन में योग की मेहनत नहीं है? मेजोरिटी हाथ उठा रहे। तो यहाँ तो योग के समय फुल होता होगा मैं समझती हूँ, है ना? तो इसीलिए योग का चार्ट भी हमारा नंबर 1, और उसमें भी बाबा कहता है ड्रिल, हमारी जो रूहानी ड्रिल है उसका हमें अटेंशन रखना है, क्योंकि हमारी योग की भी स्टेजेस हैं, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, अव्यक्त स्थिति, निराकारी, ये जो हम देही अभिमानी स्थिति बोलते हैं। तो हर स्थिति में हम कभी भी जिस समय हमको जो स्थिति की जरूरत है हम सेकंड में बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना, माना न्यारे हुए और फिर कर्म में आए, है ना। वो तो न्यारे होकर कर्म में आए माना, तब बाबा कहता है कि न्यारे होकर प्यारे बनो, लेकिन वो हमारी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब हमारे समेटने की शक्ति और विस्तार को सार में लाने की शक्ति, इसको बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हमारे मन पर पावरफुल होगी, यानी हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तब हम कोई भी स्टेज में जब चाहें जितना समय चाहें स्थित हो सकते हैं, उसको ही बाबा एकाग्रता कहता है। लेकिन अगर मन कोई भी बातों से भारी है, अब दुनिया में रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ समस्या खड़ी रहती है, हाँ बुद्धि उसमें उलझी रहती है, यानी अगर हम व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ कहाँ ढीला होता है? हाँ, जहां ही प्रॉब्लम आई, परिस्थिति आई, हम गए व्यर्थ संकल्पों में, माना क्यों क्या में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ, अब क्या करें, कैसे करें, ऐसे होगा कि नहीं होगा, माना इन व्यर्थ संकल्पों में हम गए, उसकी क्यू लगाई, भारी हो गए। अब उड़ती कला का पुरुषार्थ होगा, क्योंकि बुद्धि तो बातों में ही उलझी हुई चली जाती, तो विघ्नों से भी पार उड़ती कला की स्थिति का अनुभव हम कब करेंगे? जैसे हम बताते हैं ना, एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, तो उसके लिए कोई विघ्न है ही नहीं। आसमान में क्या विघ्न है? आसमान में तो सिर्फ बादल आते हैं और वो बादलों को भी पटाख से क्रॉस कर लेता है। नीचे पहाड़ है, नदी है, शहर है, जो कुछ भी है सब कहाँ है? नीचे है। तो और वो इतना ऊंचा है कि उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी शहर आ जाए, कितने भी पहाड़ आ जाए, कितने भी तालाब नदियां आ जाए, है ना। तो ऐसे ही हमारे मन की स्थिति ऊंची चाहिए। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, अब जैसे कहा ना अचानक का टाइम है, तो अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो जाती है जिंदगी में, कोई थोड़ी पूछ कर आती है। अब जैसे कोरोना आया, थोड़ी पूछ कर आया, वो तो एक मिसाल है, बाकी भी अचानक किस परिवार में किसी की डेथ हो जाती है। अभी भी मुझे सुना रही थी बॉम्बे की बहन की, यंग डॉक्टर, 36 साल की उम्र उसकी, और उसको हार्ट अटैक आया, खुद डॉक्टर है, आईसीयू की डॉक्टर है, और उसको हार्ट अटैक आया और चले गए। तो किसी का कोई कुछ कह नहीं सकते ना, माना कोई भी स्थिति पैदा हो जाती है जिंदगी में, तो जिसके सामने आई है उसको तो उसे पार करना ही है ना। अच्छा, उसकी मदर आई थी, हाँ भोग के लिए पूरा ग्रुप आया बॉम्बे का, वही मुझे सुना रहे थे अभी। तो मतलब अचानक कुछ भी हो सकता है। अब प्राकृतिक आपदाओं का, आप लोग सब ईस्टर्न जोन से आए हो, हर साल कोई ना कोई वहाँ बाढ़ में कितने लाखों लोगों के ऊपर इफेक्ट आ जाता है ना। उड़ीसा की तरफ तूफान आते ही रहते हैं, कोई ना कोई तूफान लगा ही रहता है। मतलब कहने का ये सब तो होना ही है, लेकिन ये सब होते हुए भी मेरे मन पर उसका असर ना आए। यानी बाबा ने जैसे हमें समझ दी तीनों कालों की, कि हर बात में कल्याण है और ये समय है, प्रकृति भी अपना काम करेगी क्योंकि प्रकृति को सफाई करनी है, और ये समय है कि हमारे भी सारे हिसाब किताब खत्म होने, तो ये जो भी बातें हैं वो सब हमारे हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए हैं, तभी हम कर्मातीत बनेंगे। तो वो ज्ञान अगर बुद्धि में है तो हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, जिसको बाबा कहता है कल्याण का बिंदु लगा दो। कितनी भी बुरी बात हो रही है, अब आप निकले घर से, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए और ट्रेन छूट गई, ऐसे हो जाता है कई बार, तो कल्याण हो गया, बुरा हो गया, टिकट भी गई, ट्रेन भी गई, तो क्या कहेंगे, बुरा हुआ अच्छा हुआ? सोचो सोचो, हिम्मत है ऐसे सोचने की ऐसे टाइम पर, हाँ कि ट्रेन छूट गई और बहुत अच्छा हुआ, बाद में उस समय नहीं पता चलता, हाँ उस समय तो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ हमारे साथ, मेरे साथ दो बार हुआ, फ्लाइट छूट गई। आप सोचो फ्लाइट छूट गई तो ट्रैफिक में फंसे। मैं गई थी फिलीपींस में, फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया के पास वहाँ आइलैंड्स वाला देश है, तो हमको मनीला से दूसरे आइलैंड जाना था। वो मनीला में इतना ट्रैफिक, अब निकले तो हम 4 घंटा पहले थे, फ्लाइट में 2 घंटा पहले पहुंचना होता है, पर दूर था एयरपोर्ट, लेकिन वो ट्रैफिक में फंसे कौन से टाइम पहुंचे, जब फ्लाइट के उड़ने का टाइम था, तो चेक इन तो पहले ही बंद हो जाता है ना, 1 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो लिया ही नहीं उन्होंने। और नेक्स्ट डे जहां हमें जाना था वहां उन्होंने प्रोग्राम रखा था। तो मैं एक बात कह रही हूं कि छूट गई ना फ्लाइट, तो हमने संकल्प नहीं चलाया, अब ठीक है छूट गई, ड्रामा में था, फिर अब करना क्या है, अब पहुंचना तो है, अब क्या किया जा सकता है, वो सोल्यूशन हम सोचें। तो फिर वही हमने प्लान किया, फिर पता किया कि बस जाती है वहां पर, वो नाइट बस थी, और फिर वो बस लेकर के फिर फ्लाइट की जर्नी 1 घंटे की थी और बस की 8 घंटे की, तो 8 घंटे का ट्रैवल था। तो फिर वो नाइट बस लेकर के हम गए और दूसरे दिन सब प्रोग्राम अच्छे से हो गया जो भी था। तो कभी भी संकल्प नहीं चलाना है, क्योंकि जीवन में ये ऊपर नीचे होना, ये तो कलयुग में हम तो बाबा के बच्चे संगम युग पर हैं, लेकिन ये भी हमारे पेपर होते हैं कि ड्रामा पर हमारा निश्चय कितना अटल है। तो हम अचल, अटल, अडोल रहते हैं तो हम पासविद ऑनर होते हैं। कोई भी बात आई, हिलना नहीं है, क्यों हो गया, बाबा ने मदद नहीं की, बाबा तो मदद करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, पर ड्रामा में कई सीन ऐसे होते हैं जो हमें पार करने, वो हमारा पेपर होता है। तो हम एक रस स्थिति में बिना हलचल में आए उन्हें क्रॉस करें, उसको हम कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। या परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं, उसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। किसको कहेंगे? हाँ, ड्रामा पर, हाँ, तभी हम ड्रामा का बिंदु लगा सकते हैं। नहीं तो बाबा कई बार हंसी में कहते हैं कि ड्रामा ड्रामा भी बोलते रहते हैं और हिलते भी रहते हैं, क्यों क्यों भी करते रहते हैं, दोनों ही बात। फिर अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे में परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता भी चाहिए। तो जितना हम सहनशील होंगे ना, जैसे लोगों का भी सामना, तो माना सामना नहीं करना है हमें लोगों का, लोगों को सहन करना है, लेकिन ऐसे लोग भी तो हमारे जीवन में होते हैं जो कोई ना कोई ऐसी बात आपको बोल देंगे, माना हिसाब किताब उनसे भी चुकतू होता है। तो अगर हम फीलिंग में आ गए, अब इसने मुझे एक बात कही और मुझे फीलिंग आई, मेरे 4 दिन खराब हो गए, क्योंकि क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो व्यक्ति हमारे आसपास ही होता है, बार बार दिखाई देता है, जितनी बार दिखाई देता है उतनी बार हम रील घुमाते रहते हैं, और उतनी बार क्या हो रहा है। तो मेरा टाइम वैल्यूबल है ना, हम व्यर्थ संकल्पों में अपना उसके कारण समय बर्बाद कर रहे हैं, और उसी से योग लगा रहे हैं, बाबा से तो योग ही टूट जाता है, सारा समय कौन घूम रहा है दिमाग में। तो इसीलिए बाबा हमें सहनशीलता की बात कहता है कि ये गुण अगर हमारे अंदर है तो इन बातों में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमें पता है कि वो आत्मा जो भी है, उसका संस्कार है, उसका हिसाब किताब है, ठीक है, हमें उसको शुभ भावना देनी है, हमें उसे कैसे पार करना है वो विधि बाबा ने हमें बताई है, और जितना हम सहन करेंगे हमारे मार्क्स प्लस होते जाएंगे। और अगर हम उसके जैसे बन गए, माना जैसे को तैसा देने में लग गए, तो क्या हो रहा है, हमारा माइनस हो रहा है ना। और आलस्य, अलबेलापन नहीं होना चाहिए हमारी दिनचर्या में। अलबेलापन कैसे आता है, बाबा तो शुरू से ही कह रहा है विनाश होने वाला है, अब पता नहीं, दिखाई तो कुछ देता नहीं है, है ना। अगर हम ऐसे सोचते हैं, सारी जिंदगी का ही तो पुरुषार्थ है, ठीक है चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, सतयुग तक नहीं पहुंचेंगे तो स्वर्ग में तो पहुंच ही जाएंगे, माना जो अलबेलेपन के विचार होते हैं ना, जैसे जैसे सब चल रहे हैं वैसे हम भी तो चल ही रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं दनलब के गद्दे लगाते हैं। तो दनलब के गद्दे माना ये सोचना, फॉलो ब्रदर सिस्टर करना है, हमको क्या करना है, फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाबा कभी अलबेले हुए, इतनी आयु थी बाबा की, लेकिन फिर भी बाबा का रिकॉर्ड है, बाबा 2:30 बजे उठ जाते थे, 2:30 बजे उठ करके बाबा अमृत वेला करते थे, मुरली लिखते थे, वो बाबा का पक्का नियम था। तो जब बाबा अलबेले नहीं हुए तो हमें भी अपने पुरुषार्थ में, और जैसे कहा ना अब तो समय का कोई भरोसा ही नहीं है, तो हमें अपने पुरुषार्थ में अलबेले नहीं होना है। वो चलो कोई एक मजबूरी हो जाती है, कभी सचमुच ही तबीयत ऐसी है, शरीर की स्थिति ऐसी है कि हम बिल्कुल वैसे नहीं उठ सकते बैठ सकते। कई बार तो बाबा मुरली में कहते हैं तो भी मुरली मिस मत करो, लेटे लेटे भी मुरली सुन लो, है ना। तो चलो हमें सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है, पर अपने घर में तो लेटे लेटे हम सुन सकते हैं ना। अब टीवी, बाबा ने सब हमें साधन सुविधाएं दे दी, आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई कि हमारे लिए अब कहीं भी मुरली सुनना मुश्किल नहीं है। तो ये हम कभी भी अलबेलापन अपने अंदर नहीं आने दें, और ये भी नहीं कि बाबा मैं तो इतना देरी से आई, अब इतना देरी से आए हैं, जो पहले 50 साल से आ गए, जो हमारी दादियां 80-90 साल, दादियां तो सब कर्मातीत होकर संपूर्ण होकर चले भी गए, है ना, हमारी सब दादियां तो चले गए, तो अभी हम क्या कर लेंगे, इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये तो मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, ड्रामा में मेरा तो पार्ट ही ऐसा है। फिर कईयों के थोड़े विघ्न भी होते हैं, है ना, किसी ना किसी तरह के विघ्न, परिवार वालों के या जो भी, तो उसको भी वो पार नहीं कर पाते हैं, विघ्नों को भी, तो उसमें ही कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। कई तो इसके कारण फिर पुरानी दुनिया में भी चले जाते हैं, है ना, ऐसे हम कई मिसाल हमने देखे भी हैं। तो ये सारा जो भी आता है हमारे सामने, बाबा कहता है ऐसे संकल्प करना, ये भी कमजोरी के संकल्प हैं, क्योंकि बाबा ने आपको क्या बनाया है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है ना, आप कोई कमजोर आत्मा नहीं हो। कभी कहा बाबा ने कमजोर आत्मा हो, क्या कहा, शक्तिशाली आत्मा हो। तो अपने स्वमान में रहो, जितना स्वमान में रहेंगे उतना ये विघ्न आपको विघ्न लगेंगे ही नहीं। वो स्वमान की स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है, ऊंची स्थिति है, वो हमारे अंदर बल भर देती है, तो हमें लगता ही नहीं है कि इतनी मजबूरियां हैं हमारे आगे, क्या करें कैसे करें कैसे चलें, वो संकल्प ही नहीं आते। करना है माना करना है, संकल्प क्या होता है, जो दृढ़ संकल्प वाला, आलस्य अलबेलापन खत्म करने का गुण ही है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, करना ही है, वो जिसको बाबा कहता है धरत परिये धर्म ना छोड़िए, ना जो भी हो जाए। फिर कई तो कहते हैं चाहे जान भी चली जाए, वो भगत भी ऐसे होते हैं, वो कोई व्रत उपवास करते हैं ना, तो जान भी चली जाए तो भी मैं व्रत नहीं तोड़ूंगा। तो क्या हम बाबा के लिए थोड़ा बहुत नहीं कर सकते क्या, कोई दृढ़ संकल्प कर सकते, नहीं कर सकते, तो बस थोड़ा सा दृढ़ संकल्प कर लो। चलो ज्यादा नहीं कर पाते, एक दिन पहले कर लो कि आज का दिन का चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है, है ना। तो इस तरह से हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र बना सकते हैं, जो वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हमारे पुरुषार्थ की गति अभी उड़ती कला वाली ही होनी चाहिए। तो जैसे कहा ना रूहानी ड्रिल वाली बात, कि हमारा योग जितना पावरफुल होगा उतना ये विघ्न टिकेंगे ही नहीं। योग विघ्न विनाशक बनाता है ना हमको, क्योंकि बाबा की शक्ति हमें मिलती रहती है। जितना हम योग में रहते हैं माया दूर से ही नमस्कार करती है, क्योंकि उसको पता है इनके साथ कौन है, क्योंकि माया भी तो सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते हैं ना माया भी सर्वशक्तिमान है, तो या तो माया होगी या बाबा होगा। तो अगर बाबा हमारे साथ है तो माया आ नहीं सकती, माया दूर से ही जाएगी। और लास्ट हमें ये ध्यान देना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति रहे हमारी। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना पुरानी दुनिया में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अभी हम जा रहे हैं सतयुगी दुनिया में, तो हमें सतयुगी दुनिया ही इमर्ज रूप में रहनी चाहिए। तो जो भी देह के संबंध हैं, अपनी खुद की देह में भी लगाव नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है ना, खुद को भी सदा क्या समझना है, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों को यूज कर रही हूं, बाबा ने मुझे ये शरीर दिया है सेवा के लिए, ये भी बाबा की अमानत है। हम कहते हैं ना तन मन धन सब कुछ तेरा, तो सचमुच वो मैं ऐसा ही हम फील करें उसको कि बाबा का तन है, बाबा ने दिया है, बाबा हमसे सेवा करा रहा है। कहते ना हम करण करावन हार बाबा है, तो किसी में भी लगाव नहीं। फिर किसी दूसरे देहधारी में भी बुद्धि कभी भी ना जाए, मेरा तो बाबा ही है। और देह के पदार्थों में भी नहीं, वैराग्य माना फिर सबसे वैराग्य, तो देह के पदार्थों का आकर्षण हाँ उसमें भी कई बार बुद्धि जाती। देह देह के संबंध फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन देह के पदार्थ नहीं छूटते हैं, तो पदार्थों में बुद्धि जाती है। तो सर्व प्राप्तियां कराने वाला कौन, बाबा है ना। तो बाबा को हमेशा, क्योंकि बाबा में सारा संसार समाया है, व्यक्ति वैभव सब बाबा में समाये हैं, तो उससे इच्छा मात्रम अविद्या बनना, नहीं तो फिर बुद्धि हमारी उनमें जाती है तो वो भी हमारा समय जाता है। और कई लोगों को समय यूं बर्बाद करने की आदत होती है, समय है लेकिन समाचार देखते रहेंगे। अब समाचार देख रहे हो तो कितना कितना समाचार देखना है, ज्यादा से ज्यादा। चलो हमको संसार समाचार मालूम होना चाहिए, वो 10 मिनट में मालूम हो जाता है। अब हम बैठकर आधा घंटा देख रहे हैं, 1 घंटा देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। या आजकल तो सोशल मीडिया की माया है, एक बार उसमें फंसे तो कब कब आपका 1 घंटा चला गया आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये समय बर्बाद करने वाले, क्योंकि हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। बाबा हमेशा मूल्यों में कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकेंड की वैल्यू वर्षों के बराबर है। तो फिर चलो हम उसको वर्षों के बराबर ना भी समझें तो भी टाइम तो वैल्यूबल है या नहीं, है ना। तो हमारा समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए, समय सफल होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी व्यर्थ की बातों में, चलो हम कोई मनोरंजन भी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उससे ज्यादा हमें उन सब चीजों में नहीं जाना है, वो फिर हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। तो जितना हो सके हम व्यर्थ से भी अपना बचाव करते रहें, तो सचमुच उड़ती कला का पुरुषार्थ हम करेंगे और समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।
यही तमन्ना है। तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
शांति, हम एक हाथ की ताली से दीदी जी का धन्यवाद करेंगे।